पृष्ठ संख्या 39, कबीर। कबीर में जैसा संकेत किया गया, कई तरह के रंग हैं, भाषा के भी और संवेदना के भी। हिंदी की बहुरूपी प्रकृति उनमें खूब खुली है। कुछ मनोस्थितियों के चित्र एक साथ रखने से बात स्पष्ट होगी और उपर्युक्त कसौटी की पहली जांच भी हो सकेगी। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आप ना सो चले हमारे साथ। जेतु बाभन बभनी जाया, तो आन बाट होई काहे न आया। हरी मोरा पियू, मैं हरी की बहुरिया। ऐसे लोगनी सौ का कहिए, जे नर भय भगति तय बाहज, तिनते सदा डराने रहिए। सुपने हूँ बरराई के, जिहि मुख निकसे राम, ताके पग की पा नहीं मेरे तन को चाम। कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवरी, जित खेचे तित जाऊं। जौरे खुदाई मसीती बसतु है, और मुलुक किस केरा, तीरथि मूरति राम निवासी, दुहु मही किनहु न हेरा। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजार या जंग में, हमन दुनिया से यारी क्या। तरह तरह के चरित्रों और परिस्थितियों के संघर्ष में से विविध प्रकार की मनस्थितियों का चित्रण महाकाव्यकार करता है। मुक्तक रचयिता को ऐसा वैविध्य स्वभावतः सुलभ नहीं। पृष्ठ संख्या 40। इसीलिए चाहे विद्यापति हो, चाहे बिहारी या महादेवी वर्मा, उनके कृतित्व में एक रम्यता अधिक मिलती है। कबीर बड़े कवि वहाँ हैं जहाँ वे अपने ही अंतर जगत का वैविध्य संधान करते हैं और उसी से जीवन की विराटता सिरजते हैं। तुलसी के संदर्भ में कवि की भावुकता की जो कसौटी रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित की है, प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। यह कबीर के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकती। बाहर के वित्त के अभाव में वे सभी मनोदशाएं, जो कभी कभी एक दूसरे के विरुद्ध जाती हैं, कवि अपने भीतर ढूंढता है। अपेक्षाकृत कम सामग्री से अपेक्षाकृत अधिक की रचना उसे करना है। स्पष्ट ही है यह अधिक कठिन कवि कर्म है जिसका निर्वाह कबीर ने किया है। यह प्रक्रिया को लक्षित न करने पर ही यह संभव है कि कबीर में कला पक्ष की न्यूनता दिखाई दे। हिंदी आलोचना में कबीर के साथ यह व्यवहार अब तक होता आया है उनके विरोधियों द्वारा, और आश्चर्य है उनके प्रशंसकों तथा पक्षधरों द्वारा भी। यह विलक्षण है कि कबीर में जैसा बोलियों का सम्मिश्रण है, वैसा ही मनोदशाओं का भी। यह निश्चय ही उनकी कला क्षमता का प्रमाण है। पूरब में भोजपुरी से लेकर पश्चिम में राजस्थानी तक उनका भाषिक संवेदनात्मक विस्तार है। यो शब्द के पूरे अर्थ में वे हिंदी कवि हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें सुनी सुनाई बातों का ज्ञान था। वे मूलतः समाज सुधारक थे। ऐसी उक्तियां कबीर के विवेचन और मूल्यांकन में अप्रासंगिक बिंदु हैं। अपने जीवन काल में ही हमने देखा है कि आधुनिक कालीन शिक्षण संस्थाओं के जमाने में निराला प्रायः अनपढ़ थे, पर इस शिक्षा और कवित्व रचना में कोई सीधा संबंध नहीं है। निराला की गहन काव्य साधना और सूक्ष्म दार्शनिक पर्यवेक्षण की प्रशंसा इस तथ्य के उल्लेख की अपेक्षा नहीं रखती कि निराला सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक शिक्षित थे। स्वयं कबीर के गुरु रामानंद बड़े पंडित और विद्वान थे, तथा निराला के अध्यात्म गुरु विवेकानंद भी वैसे ही थे। इन दोनों ने कविताएं भी लिखी हैं, पर कबीर की तुलना में रामानंद और निराला की तुलना में विवेकानंद का काव्य उल्लेख योग्य नहीं हो पाता। समाज सुधारक और दार्शनिक भी कबीर से कहीं बड़े बड़े हुए हैं। समाज सुधार की भावना या हिंदू मुस्लिम एकता कबीर के लिए एक प्रमुख वस्तु थी, जिसे उन्होंने अपनी काव्य संवेदना में ढाला, और काव्य बनकर ही उनके संदर्भ में वह स्मरणीय है। झंडा ऊंचा रहे हमारा में राष्ट्रीयता ही राष्ट्रीयता है, कविता नहीं। यह अलग बात है कि इस गान को गाते गाते न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। राष्ट्रीयता जहाँ कविता बनी है, वे प्रसाद और निराला के गीत हैं। गलत तर्क के सहारे सही प्रशंसा नहीं हो सकती। और कबीर बहुत बार ऐसी ही नासमझी के शिकार हुए हैं। देखने की बात यह है कि कबीर की फक्कड़ वृत्ति और उनकी नाराजगी कविता कैसे और कहाँ बनी है। कबीर में कविता के बनने और श्रेष्ठ रूप में निखरने का कारण जैसा दिखाया गया, उनमें तरह तरह की विरोधी मनोदशाओं तथा उनसे जुड़ी काव्य भाषा के स्तरों की रगड़ है। क्षेपकों की दृष्टि से संभवतः कबीर का पाठ सबसे अधिक विपुल है। कई शोधकर्ताओं ने बड़े परिश्रम से उनकी मूल रचना का अनुसंधान करने का यत्न किया है। क्षेपकों का फैलाव समाज में कवि की व्यापक स्वीकृति का प्रमाण है। ये रचनाएं कबीर के अनुयायियों और प्रशंसकों ने ऐसे लिखी हैं कि वे कवि के कृतित्व में घुल मिल गई हैं, पानी में नमक की तरह। प्रबंध रचना के क्षेपक शोधकर्ता और पाठक दोनों को परेशान करने वाले होते हैं, पर फुटकर पदों और साखियों में उनकी उपस्थिति वैसी विकृतिकारी नहीं होती। इस स्थिति में इन पदों और दोहों को कबीर की उपरचना कहा जा सकता है, क्योंकि वे कवि की रचनाओं से प्रेरित और प्रभावित हैं तथा व्यापक समाज द्वारा रचे जाने पर वे कवि के अपने वांग्मय की प्रकृति से स्वीकृत होकर उसका अंग बन गए हैं। चित्रकला के क्षेत्र में यह समस्या कई बार आती है कि कोई विशिष्ट कलाकृति किसी बड़े उस्ताद की मूल रचना के रूप में बरसों तक प्रशंसित होती रहती है, और फिर जब सहसा कभी भेद खुलता है कि यह कलाकृति उस उस्ताद की रचना न होकर महज उसकी अनुकृति या कि शैलीगत नकल है, तो दर्शकों के मन से उतर कर वह सिर्फ एक कैनवस हो जाती है। तब यह प्रश्न सहज उठता है कि दर्शकों की प्रतिक्रिया उस कला वस्तु के लिए थी या उस्ताद के नाम को लेकर, या इन दोनों की अपनी क्रिया प्रतिक्रिया के लिए। साहित्य में कालिदास, शेक्सपियर, खुसरो, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी बड़े लेखकों की एक पूरी श्रृंखला है, जिनके साथ पाठ की प्रामाणिकता की समस्या और बहुत बार उनके अपने रचनाकार व्यक्तित्व के अभिज्ञान की समस्या जुड़ी हुई है। अपने कृतित्व को समाज से मिलाकर और अपने व्यक्तित्व को रचना से अभिन्न करके वे सच्चे अर्थों में सुकवि बनते हैं, जिनके ऊपर जरा मरण के नियमों का असर नहीं होता। कबीर इसी कोटि के रचनाकार हैं। इस विवेचन से एक रोचक निष्कर्ष यह भी निकलता है कि बड़ा रचनाकार अनुकरणीय नहीं होता, पर यदि कोई अपना नाम हटाकर फिर उसकी नकल करना चाहे तो इसके लिए उसे छूट मिल जाती है। इसी माने में क्षेपक को बड़े कवि की उपरचना के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। भाषा, संवेदना, विचार प्रणाली सभी दृष्टियों से कबीर शास्त्रीयता के समक्ष खाटी देसीपन को महत्व देते हैं। संस्कृति के कुपजल को छोड़कर वे भाखा के बहते नीर तक स्वयं पहुंचते हैं और सबको पहुंचाते हैं। संस्कृत से मुक्त लोक संस्कृति को बनाने में उनका योगदान अप्रतिम है। पंडित और मुल्ला, यहाँ दोनों को वे एक साथ अप्रासंगिक करार देते हैं। मूलतः कवि होने के नाते शास्त्र की तुलना में वे अनुभव को प्रामाणिक मानते हैं। भाखापन को लेकर यह गहरा आत्मविश्वास भाव उनके रचनाकार व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। भाखा के पहले बड़े कवि होने के नाते वे युगीन संवेदना की इस मांग को पूरा करते हैं।